हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूं आपके अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं श्री सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि सीईओ और डायरेक्टर हैं सक्सेस मॉन्क्स के। अब आप जानना चाहेंगे कि ये सक्सेस मॉन्क्स क्या है, लेकिन इन सारी बातों को बताने से पहले मैं इनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। और फिर हम आपको बताएंगे कि सक्सेस मॉन्क्स क्या है और साथ के साथ क्या है राज के आज सिद्धार्थ शर्मा जी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में है।
थैंक यू सो मच भावना, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर।
सिद्धार्थ शर्मा जी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में हैं और अब मैं आपको बता दूं कि आज तक का सिद्धार्थ शर्मा जी का जो सफर है वो बहुत ही खुशनुमा रहा होगा, क्योंकि अब इन्होंने जिंदगी में वो पा लिया है जिससे वो हमेशा से पाना चाहते थे। लेकिन अगर बात की जाए अब तक की जिंदगी, तो चलिए डालते हैं एक नज़र कि इनकी अब तक की जिंदगी कैसे गुजरी।
भावना, जैसा कि आपने अभी एक लाइन बोली कि सफ़र काफ़ी खुशनुमा रहा होगा, मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि उतना खुशनुमा भी नहीं रहा था, क्योंकि जो मैं अब कर रहा हूँ वो मैं हमेशा करना चाहता था लेकिन मैं वो हमेशा कर नहीं रहा था। 4 साल तक मैं एक और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी के अंदर रिसर्च एनालिस्ट का जॉब करता था। मुझे जॉब पसंद था लेकिन अंदर ही अंदर से आवाज़ आती थी कि आप ये लाइफ भर या फिर उम्र भर आप ये नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कैसे वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा या फिर मैं क्या कर पाऊँगा, बिकॉज मैं शुरू से ही किताबें लिखना चाहता था और मुझे बोलने का बहुत शौक है। सो इंस्पिरेशनल स्पीकिंग और मोटिवेशनल लेक्चर्स देने का बहुत शौक है। ये 4थी बार है मैं यहाँ पे मानव रचना में लेक्चर देने के लिए आया हूँ, पर ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे मानव रचना के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुरू में वो जो ट्रांजिशन था उसके बारे में ही ढूंढने में और तरीके ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन हाँ, एक बार जब मुझे समझ में आ गया कि मेरा पैशन जो है वो राइटिंग और इंस्पिरेशनल स्पीकिंग में है, मैं उसी दिन अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और आज 4 साल हो चुके हैं और अब मैं अपनी खुद की ही कंपनी सक्सेस मंक्स का पार्ट हूँ और अपने काम को एंजॉय करता हूँ, ये उसकी सबसे अच्छी बात है।
जी, ये बहुत कम लोग कह पाते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं हम उस काम को वाकई एंजॉय करते हैं, लेकिन ये चीज आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे आपको सिद्धार्थ शर्मा, जिन्होंने लिखी है बुक 60 Keys to Success। जी, ये जो राज था इस राज पर से मैंने पर्दा हटा दिया है और साथ के साथ मैंने आपको बताया कि ये सीईओ और डायरेक्टर हैं सक्सेस मॉन्क्स के। लेकिन अब बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की, यानी अब तक इन्होंने जिंदगी में बहुत सारी डिग्रियां अक्वायर की होंगी, और क्या उन डिग्रियों को इन्होंने सही तरीके से यूज किया या क्या अपने जितनी भी इन्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसे ही अपना प्रोफेशन बनाया या इनका कोई पैशन अलग था जिसे आज ये फॉलो कर रहे हैं।
जी, जो भी मैंने डिग्रियां हासिल करी हैं वो ग्रेजुएशन तक तो सबको मान्यता, सारी मान्यता प्राप्त डिग्रीज हैं। मैंने बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी किया, बट उसके बाद मेरा शुरू से ही, इनफैक्ट पिछले 10 सालों से साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट था। तो मैंने यहाँ पे एमए साइकोलॉजी के कोर्स के बारे में पता करवाया और मैंने उनका कोर्स करिकुलम मंगवाया और वहाँ पे जो मैंने देखा कि आज भी वही 30-40 साल पुरानी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और जहाँ तक कि मेरी रीडिंग मुझे बताती थी वो ये था कि आजकल साइकोलॉजी में इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं कि वो अभी तक हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस होने में कम से कम 20 से 30 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं इंडिया के बाहर विदेश गया, जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ा। मैंने उनके सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करे उस पर्टिकुलर साइकोलॉजी की ब्रांच के, और फिर उसके बाद वापस आकर मैंने उस सब्जेक्ट को और भी डीप में स्टडी किया। देखिए, मेरा मानना है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए डिग्रीज से ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी होता है, और एक इंसान जिसने किसी सब्जेक्ट के ऊपर 100 किताबें पढ़ी हो वो आराम से उस इंसान को हरा सकता है जिसके पास एक सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ 2 डिग्रीज हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारे PhDs आप देखेंगे जो घूमते फिरते रहते हैं, जिनको शायद ही अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब उससे रिलेटेड रिसर्च करी थी वो 40 साल बीत चुके हैं और आज भी वो अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं। मेरा मानना है कि आज एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमारे हर 1 या 2 साल के बाद द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है इन दिस वर्ल्ड वो डबल हो जाता है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाती है। So, I am a fan of reading and attending बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और मेरा मानना है कि असली जो नॉलेज की सोर्स है वो डिग्रीज नहीं किताबें हैं।
बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया कि ढेर सारी डिग्री बटोर लेने से अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं तो शायद ये गलत है। आपके पास नॉलेज होने की जरूरत है, और ये ज्ञान क्या है इसके बारे में हम इनसे करेंगे ढेर सारी बातें, और साथ के साथ ये भी जानना चाहेंगे ये 60 कीज टू सक्सेस यानी एक बहुत बड़ा छल्ला जिसमें 60 चाबियां हैं, और वो 60 की 60 चाबियां जहां लगती हैं आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। मेरे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ शर्मा, हु इज द राइटर ऑफ 60 कीज टू सक्सेस, साथ के साथ ये सीईओ और डायरेक्टर हैं सक्सेस मॉन्क्स के, और अब हम इनसे बात करते हैं कि जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा दिस इज इट, अब मुझे कुछ और करना है और मुझे ये रेगुलर 9 to 5 की जॉब नहीं करनी है।
मेरा टर्निंग पॉइंट अगर आप पूछें तो वो मेरी जो आने वाली बुक है उसका पहले चैप्टर की स्टोरी भी है। मेरी मुलाकात एक फ्लाइट के अंदर एक 87 साल के बुजुर्ग आदमी से हुई थी, और उन्होंने कुछ बातें करना शुरू किया जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ बढ़ा और मैंने जानना चाहा कि वो क्या करते हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि मैं शुरू से टीचर बनना चाहता था लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक बैंक में बिताए। पिछले 13 साल से वो या कुछ 14 साल से वो टीचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कोई उतना सीरियसली सुनता नहीं है। वो कहते हैं जब भी मुझसे कोई पूछता है मैं तभी बता पाता हूँ, कोई कॉलेज या कोई मुझे हायर नहीं करता उस एज में। लेकिन मैं इतना ही मेरी लाइफ का एक अफसोस है कि जो काम मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ वो मैं पिछले 53 सालों से कर सकता था। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी कि जब भी आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे होंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस हमेशा आपकी लाइफ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि डिड आई डेयर टू ड्रीम, क्या मैंने सपने सोचने की हिम्मत करी। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में सपने सोचते ही नहीं हैं, वो सोचते ही नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा कि डिड आई लिव माई ड्रीम, आपने सपना सोच लिया। बहुत लोग सपने लेके घूम रहे होते हैं, कुछ सपने देखने के लिए सोते हैं, कुछ को सपने सोने नहीं देते। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि डिड आई लिव माई ड्रीम, कि आपने अपने उन सपनों के साथ किया क्या, क्या आप बस वो सपने अपने साथ ही लेकर आए थे और अपने साथ ही लेकर चले गए या आप कुछ छोड़ कर गए यहाँ पर। और तीसरा जो होगा क्वेश्चन वो होगा डिड आई शेयर माई ड्रीम, कितने लोगों की लाइफ्स आपने टच करी। जब मैं एक कंपनी में काम करता था मैं वही 300 या 400 लोगों का मेरा दायरा था और मैं रोज़ उन्हीं 20 या 40 लोगों से मिलता था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 40 लोग अच्छे नहीं थे या फिर उनमें कुछ कमी थी, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप नए लोगों से मिलेंगे नहीं, जैसे कि आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे इतना कुछ पता चला कि रेडियो इंडस्ट्री कैसे काम करती है और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। जब तक आप नए लोगों से मिलेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि और क्या क्या दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरे को रेडियो जॉकी बनना है, ये मेरा सपना है, तो मैं सीधा भावना का नंबर उनको दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। सो लोगों से मिलना और नई नई चीज़ें सीखना, मेरा मानना है कि उस पॉइंट पे जब उन्होंने ये 3 चीज़ें बताई थी, डिड आई डेयर टू ड्रीम, डिड आई लिव माई ड्रीम एंड डिड आई शेयर माई ड्रीम, जब ये 3 क्वेश्चंस पे आके मैंने घर पे वापस आके सोचा, मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया।
और उस रेजिग्नेशन के बाद क्या आपको एक मिनट भी जिंदगी में ऐसा लगा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ रिजाइन करके?
रिग्रेट वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वो वक्त बहुत टफ था क्योंकि अगले 5 महीने तक मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया
जी।
और जब आप 4 साल के जॉब के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो आपकी एक सैलरी एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच चुकी होती है और लोग आपसे, और स्पेशली अगर कंपनी एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी हो तो आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली और आपके दोस्तों को भी आपसे काफी उम्मीदें होती हैं
जी।
और जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं और वो भी उस चीज के लिए जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, और मेरा काम था राइटिंग, इंस्पिरेशनल राइटिंग और इंस्पिरेशनल स्पीकिंग, लेकिन मेरे पास लोग कहते थे कि कोई 25 साल के लड़के को क्यों सुनेगा।
yes.
आपसे डबल उम्र के लोग वहाँ पे ऑडियंस में बैठे होंगे, आप क्या बोलेंगे क्या उनको। कुछ रिश्तेदारों ने मुझे सलाह दी थी कि आप 35 साल रुक जाइए, मतलब 10 साल और रुक जाइए तब आप ये बिजनेस शुरू कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो 5 महीने मैंने कुछ नहीं कमाया, 5 महीने बाद जो मेरा पहला चेक आया वो था 19,000 रुपीज़ का। अब 19,000 रुपीज़ 5 महीने में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो रफली कुछ 3,500-4,000 रुपये बनते हैं। अब मेरे पास एक ऑप्शन था, या तो मैं ये देखूं कि वो 3,500-4,000 रुपये एक, क्योंकि सिंसे एक ऑटो रिक्शा वाला भी शायद उससे ज़्यादा अमाउंट कमा लेता है, या तो मैं अपने आप को एक फेलियर के तरीके से देखता या फिर मैं अपने आप को एक सक्सेस के तरीके से देखता कि कम ही सही लेकिन आपने वो करते हुए बनाया है जो आप करना चाहते थे। एक लेक्चर दिया आपने, फ्री लेक्चर्स दिए, फिर उसके बाद कहीं से अच्छा फीडबैक आया तो कहीं ना कहीं आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। तो मैंने चूज़ किया कि मैं अपने आप को एज अ सक्सेस देखूंगा, कि लोगों ने मुझे सुना और मुझे सुनने के बाद उन्होंने मुझे पैसे दिए।
मेरे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ शर्मा और इस खास प्रोग्राम में आज हम इनसे कर रहे हैं गुफ्तगू। हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी है 60 Keys to Success, बड़ी लंबी सी चाबी है और सक्सेस की चाबी मुझे लगता है बिल्कुल ऐसी ही होती होगी क्योंकि ढेर सारा परिश्रम जो इसके साथ इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर बात की जाए इस बुक की तो मैं जानना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, हाउ डिड दिस बुक कम टू यू?
भावना, जैसे मैंने बोला ये मेरी दूसरी बुक है जो पहले पब्लिश हो गई है। दूसरी बुक में अभी भी 6 महीने टाइम है जिसको आने में। मैंने वो
और मुझे लगता है वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 60 चाबियां हैं।
जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैंने जब अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट करी तो मैंने अपने एक खास दोस्त को पढ़ने के लिए दी पहली वाली बुक की, तो उन्होंने बोला कि तुमने इतना ज़्यादा लिख दिया, 300 पेज की एक किताब बना दी, और फिर मेरे को फ्लो वाइज पढ़ने में काफ़ी वो होता है। ऐसा नहीं है कि बुक इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट उनका ये कहना था कि आप एक एक चैप्टर 20-20 पेजेस का लिख देते हो, शॉर्ट में लिखा करो। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये अगर मेरे एक दोस्त मानते हैं तो काफी लोगों का यही बिलीफ होगा कि हम 20-20 पेजेस के चैप्टर नहीं पढ़ सकते, कि आपके पास हमारे पास कुछ शॉर्ट और क्रिस्प चीजें आप बता सकते हैं। तो वहां से इस बुक का आइडिया की शुरुआत हुई। 60 Keys to Success एक्चुअली में एक बुक है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है 30 Things You Must Know in Your 20s, सेकेंड पार्ट है 20 Things You Must Know in Your 30s, एंड थर्ड पार्ट है 10 Things You Must Know in Your 40s। और इसके अंदर ऐसे 30, 20 और 10 चैप्टर्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपको जब आप 20 से 30 के बीच में हो तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हाउ टू फाइंड योर पैशन, हाउ टू अवॉइड द EMI ट्रैप, एंड हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। और ये सारी जो गूढ़ सत्य हैं इनको 2-2 पेज में समराइज करने की मैंने कोशिश करी है। और इस बुक के एंड में मेरे खुद के ओरिजिनल 120 कोटेशंस हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स और हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, और काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं उसको। तो ये बुक एक प्रॉपर कंपाइलेशन है, आप इसको कभी भी कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ये इस बुक की खास बात है। आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ना, आप बीच में से भी उठाइए, आप 2 पेज का एक चैप्टर पढ़िए, एक कोट पढ़िए, और आपका उस दिन का काम पूरा हो गया। तो
जी ये बहुत अच्छा है कि किस एज में आपको क्या करना है, बड़ा तरीके से इन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूट करा है। लेकिन अब सिद्धार्थ जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन अ प्रेजेंट सिनेरियो जहां पर ज्यादातर रोमांटिक फिल्म्स और रोमांटिक बुक्स बिकती हैं, जहां आई लव यू ज्यादा बिकती है और जहां मोटिवेशनल टॉक्स की बात की जाए, तो सब ये देखते हैं कि यहां से जल्दी से कैसे कट लिया जाए। ऐसे टाइम में आपको लगता है कि ऐसी बुक को लेकर आना आपके लिए एक बहुत ही टीडियस टास्क रहा होगा?
जी बिल्कुल, स्पेशली जब आप एक यू नो 20s की एज में हो और आप ऐसी चीज़ें लोगों को अगर बताने की कोशिश करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग योर पैशन, या फिर आपको इंस्पिरेशनल स्पीकिंग के अराउंड आप कुछ करने की कोशिश करें, तो ऑडियंस थोड़ी एप्रीहेंसिव होती है आपकी बातों को लेकर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल जनरेशन की कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व इस सेंस में ये कि हमारे पेरेंट्स के लिए शायद सर्वाइवल क्वेश्चन होता था, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन सर्वाइवल नहीं, फुलफिलमेंट है। कि मैंने देखा है लोगों को 20s में अपने जॉब छोड़ के कोई अपना पैशन फॉलो करते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस बुक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आजकल वो कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपने एक सेंस ये आई लव यू और ये रोमांटिक वाली चीज़ें बोली हैं, मैं जब ये मोटिवेशनल टॉक्स दे रहा होता हूँ तो एक कैटेगरी होती है एम्प्लॉयज की जो ये बोलती है आई डोंट हेट माई जॉब। अब ये कैटेगरी को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे इंसान या ऐसे लड़का या ऐसे लड़की से शादी करेंगे जिसको यू डोंट हेट? तो उनका रिप्लाई सीधा आता है, नहीं, ऑफकोर्स आई विल मैरी समबडी आई लव। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि रिसर्च ये कहती है कि आप अपने काम पे ज़्यादा वक्त स्पेंड करेंगे कंपेयर टू योर स्पाउस। दिन में आप अगर अपना प्रोडक्टिव टाइम देखेंगे, आप जब सुबह 9 बजे उठ के या 8 बजे उठ के जब आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को 7 बजे तक आप अपने काम पे होते हैं, तो वाई नॉट फाइंड अ वर्क दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू, जिसको आप करते हुए इतना खुश होते हैं कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको बहुत पसंद आती है वो चीज़। क्योंकि आप देखें ऑफिसेज में लोग हमेशा घड़ी चेक कर रहे होते हैं। मैं आपको बस एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जिस दिन से मैंने जॉब छोड़ा है मैं घड़ी पहनता हूँ, लेकिन मैं घड़ी चेक नहीं करता
जी।
क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूँ जो मैं चीज़ से कर रहा हूँ कि मुझे कोई सुध-बुध नहीं रहती कि वक्त क्या हो रहा है।
जी हाँ, ऐसा भी होता है कि वक्त का आपको पता ही ना चले जब आप काम में मशगूल हों, अक्सर ऐसा ही होने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है द सॉरी पार्ट अबाउट दिस इज कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके क्या कारण हैं?
जी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें एक हर्ड मेंटालिटी का पार्ट बना दिया जाता है जब हम एजुकेशन सिस्टम में घुसते हैं। इट इज़ पॉसिबल, हमें जैसे कि मैं अपनी बुक में मैंने लिखा है कि वी आर टॉट मोर अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट देन क्विट व्हाट यू हेट मूवमेंट। और हमें कभी ये नहीं बताया होता कि अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं है उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि हमें लाइफ में हमेशा ये बताया होता है आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है आप दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप डॉक्टर बन के खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्या आप इंजीनियर बन के खुश होंगे कि नहीं होंगे? मेरा मानना है कि इतने सारे आजकल इंजीनियर्स हैं जो मिड एज क्राइसिस के टाइम पे सबको छोड़ के अपना गिटार बैंड या फिर म्यूजिक बैंड शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण है अगर आप स्टडी कीजिए तो। मेरा यही मानना है कि हमें बचपन से अपनी ख्वाहिशों को ना एक कंट्रोल तरीके से जीने के बारे में बताया जाता है। अगर हम 10 चीज़ें मांगते हैं तो हमें सिर्फ 2 दी जाती हैं और सोच के ऊपर हमारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। मेरा मानना है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। आपको एजुकेशन सिस्टम वैरायटी ऑप्शंस नहीं देता। 12 साल मैं स्कूल गया, मेरे से आज तक स्कूल ने नहीं पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। मेरे से स्कूल ने सिर्फ ये पूछा आपको कॉमर्स चाहिए कि साइंस चाहिए। अगर मेरे से ये पूछा होता आप क्या बनना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताता कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, आप बताइए अब मैं क्या करूँ। तो यही चीज़ आई थिंक हमसे पूछना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं।
जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आपके प्रोफेशन को या आपके करियर को कोई और डिसाइड कर रहा होता है। और ये अक्सर होता है, शायद हम सबकी ज़िंदगी में होता है कि हमारे करियर को किसी और ने पहले ही क्राफ्ट कर दिया होता है। बहुत सारे सपने पेरेंट्स ने संजो लिए होते हैं और बाकी बचे हुए सपने सोसाइटी ने हम पर थोप दिए होते हैं। लेकिन क्या आप इन सपनों से बच सकते हैं? क्या आप सोसाइटी का फेस ऑफ रख सकते हैं और फिर भी खुश रह सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। रेडियो मानव रेस्ट 107.8 के स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, जिन्होंने लिखी है बुक 60 कीज टू सक्सेस, जिसको पढ़ने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूं और मैं ऑफ कोर्स इसे पढ़ने वाली हूं। लेकिन उससे पहले अगर इसी 60 कीज टू सक्सेस को आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे कैसे पा सकते हैं, ये बताएंगे हमें सिद्धार्थ शर्मा जी।
ये बुक अभी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, होम डिलीवरी की जा सकती है। इसकी होम शॉप 18 www.homeshop18 और www.ebay.in पे, फ्लिपकार्ट पे भी ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिंस ये अभी 19 जनवरी को ही लॉन्च हुई है तो अभी ये 10-15 दिन के अंदर या एक महीने भर के अंदर ये आपको हर स्टोर के ऊपर इंडिया में मिल जाएगी, हर स्टोर में मिल जाएगी।
जी सिद्धार्थ, अब एक सबसे बड़ा सवाल कि हर कोई, जिस प्रकार आपने कहा कि मैंने अपनी जॉब क्विट की और मैं वो करना चाहता था जो मुझे करना था, लेकिन कई बार ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है उन्हें करना क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज देयर ड्रीम।
जी,
तो ऐसे लोगों के साथ ये परेशानी रहती है, ना तो वो अपने जॉब को पसंद करते हैं और ना ही उन्हें ये पता होता है कि हमें करना क्या है।
ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे को वर्कशॉप के टाइम पे मुझसे पूछे जाते हैं और मैं उनको सिर्फ 2 ही चीजें बोलता हूँ। सबसे पहला जो मैं उनको बोलता हूँ वो होता है, उसको मैं टाइम का टेस्ट भी बोलता हूँ। टाइम का टेस्ट कि ऐसी वो 4 या 5 ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको जब आप कर रहे होते हैं तो आप घड़ी नहीं देखते, आपका बस मन करता है कि आप करते ही रहें और किसी को आपको आके बताना पड़ता है कि बस काफ़ी टाइम हो गया, अब आप ये काम कर लीजिए, अब आप वो काम कर लीजिए। जिसको शायद विवेकानंद ने जब लिखा था तो उन्होंने उसको एक भक्ति योग भी कहा है कि आप जो कर रहे होते हैं और जो आप करना चाहते हैं वो एकदम सेम होता है और उस टाइम पे आपको वक्त का कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न ऑथर एक है मिहाली चिकसेंटमिलाई, इन्होंने भी एक फ्लो नाम की एक बुक लिखी थी। उनका भी यही मानना है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर हैप्पीएस्ट व्हेन दे आर इन द फ्लो, और जब वो वक्त के बारे में भूल जाते हैं। तो ऐसी 5 एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे होते हैं तो आप घड़ी नहीं देखते, जैसे कि डांसिंग, ये हर आदमी के लिए अलग होता है। मेरे लिए वो स्पीकिंग है, आपके लिए शायद वो आरजेइंग है, राइट? आप जब वो कर रहे होते हैं, मैंने नहीं देखा आपको आधे घंटे में घड़ी देखते हुए। और ऐसे हर किसी के लिए एक यूनिक पर्पस होता है। देर इज़ अ रीज़न कि हमारा चेहरा किसी से नहीं मिलता, देर इज़ अ रीज़न कि हमारे हाथ की रेखाएँ किसी से नहीं मिलती, एंड देर इज़ अ रीज़न कि हमारा पर्पस सबसे अलग होता है। हमें बस वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो ये वाला टेस्ट जो मैंने टाइम टेस्ट बोला, दूसरा मैंने बोला वो होता है मनी टेस्ट। ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब शुरू किया था, जैसा मैंने बोला, मैंने फ्री लेक्चर से शुरू किया था। मुझे पैसा मिला वो तो बोनस था, लेकिन मैं वो काम करने के लिए मैं पैसा दे सकता था, लेकिन मुझे 5 महीने बाद उसके लिए पैसा मिलना शुरू हो गया। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो करते हुए आप वक्त नहीं देखते, और ऐसी क्या चीजें हैं जो करते हुए आपको पैसे की जरूरत फील नहीं होती? और जब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आएगा नहीं, क्योंकि जब आप वो कर रहे हैं जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो ऑब्वियसली आपका काम की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि जिसको भी आप वो ऑफर करेंगे वो आपको पैसे देने पे मजबूर हो जाएगा। अपनी स्टोरी से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं पहली बार वहाँ पे लेक्चर देने गया उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, दूसरी बार मैं गया तो उन्होंने मुझे बुके दे दिया, तीसरी बार मैं गया तो उन्होंने बुके प्लस मेमेंटो दिया, चौथी बार जब मैं गया तो उन्होंने बुके प्लस मेमेंटो प्लस एक एनवेलप दिया जिसके अंदर 2,500 रुपये थे। तो कहीं ना कहीं यू डू योर वर्क सो वेल दैट द मार्केट फील कंपेल्ड टू पे यू, और यही सत्य है। ऐसे लोग ये 2 क्वेश्चंस अगर अपने आप से पूछ लें, फिर उसके बाद उन्हें बस एक फाइनल सवाल ये पूछना है कि ऐसे 3 या 4 प्रोफेशंस उन एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या हैं। तो जैसे मेरे को बोलना पसंद था, दो मैं आरजे नहीं बन पाया क्योंकि मेरी वॉइस में वो वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगर मेरे को बोलना पसंद था तो मैंने अपने आप से पूछा 3 या 4 प्रोफेशंस क्या है, जवाब आया इंस्पिरेशनल स्पीकिंग।
जाते जाते सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे सभी लिसनर्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे उस सोसाइटी को जो आज के टाइम में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर ढूंढती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दायरे में दूर दूर के लोगों को दोस्त बनाया हुआ है लेकिन आसपास के लोगों की खबर नहीं है, ऐसी सोसाइटी को एक क्या मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहेंगे?
जी, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं लोगों को देना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप हैप्पीनेस चेज कर रहे हैं। आप अगर एक बड़ी सी गाड़ी भी खरीदते हैं, आप इसलिए खरीदते हैं कि कहीं ना कहीं आप सोचते हैं वो गाड़ी आपको खुशी देगी। अगर आप बड़ा सा मकान भी लेते हैं लोन लेकर, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं वो मकान आपको खुशी देगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ वो मकान आपको खुशी देगा, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको जो देगा लाइफ में वो होगा जब आप अपना पर्पस डिस्कवर कर लेते हैं कि आपको वो क्या चीज़ है जो आप करने के लिए यहाँ पे आए थे। आप इस दुनिया में 80 साल के लिए मेहमान हैं या 70 साल के लिए मेहमान हैं, तो आप करने क्या आए थे? जब आप यहाँ से जा रहे होंगे तो आप अपने आप को ये बोलेंगे कि शायद मैं जो करने आया था मैं वो करके चला गया। और उस चीज़ के लिए आप अगर अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं कि मुझे ये चीज़ें करने का शौक है और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, आप बहुत खुश रहते हैं और फिर उस खुशी की वजह से आप लोगों को प्यार बांटते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी अच्छी जाती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल हैप्पीनेस से एसोसिएटेड हैं, एंड इंटरनल हैप्पीनेस का सोर्स जो होता है वो आपका पैशन और वो आपका पर्पस होता है। तो फालतू की चीज़ों को चेज करना बंद कर दीजिए लाइफ में। आप अपने आप से एक बार अगर अकेले कमरे में बैठ के बस ये पूछें कि मेरे लिए क्या है खुशी का मतलब, या मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और यंग जनरेशन को मैं बस एक या दो चीज़ जो ये बोलना चाहूँगा, एक के पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स ने मेरी लाइफ काफ़ी चेंज कर दी थी। मैं पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स को क्रेडिट देता हूँ कि मुझे उधर से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं अपनी 20 साल की फॉर्मल एजुकेशन में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उतनी, मुझे उतनी उन 100-200 बुक्स से मिली। और जब मैंने वो बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लाइफ में उस 20 साल की एजुकेशन को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना चाहिए। तो हम पढ़ते तो हैं रोमांटिक चीजें, आई लव यू और ये सारी बुक्स, पढ़िए बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हर फिक्शन बुक जो आप एक पढ़ें उसके साथ एक नॉन फिक्शन बुक भी पढ़िए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या क्या खजाना छुपा हुआ है उन बुक्स के अंदर।
बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही गूढ़ ज्ञान को बड़े प्यार से इन्होंने हम सबको दिया है। इसी बात पे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी सिद्धार्थ शर्मा जी का, जो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को दी इतनी बेहतरीन जानकारी।
थैंक यू सो मच भावना।
जी हाँ दोस्तों, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ।